الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ پروگرام گھر اور معاشرہ ہر اتوار کی صبح 11 بجے ہوتا ہے، اور الحمدللہ آج بھی یہ پروگرام آپ ہمارا دیکھیں گے، اور اس میں مختلف موضوعات ہم لے کر آتے ہیں. ان ٹاپکس میں سے کئی ایسے موضوعات ہوتے ہیں کہ جس میں گھر میں بھی فائدہ ہوتا ہے، معاشرے کے اندر بھی اس کے فوائد ملتے ہیں. تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بے صبری کے نقصانات. بے صبری، جی، ایک طرف تو صبر ہے، اور صبر نہ کریں تو بے صبری ہے. اور جہاں صبر کے فوائد ہیں، صبر کرنے کے فوائد ہی فوائد ہیں، وہاں بے صبری کرنے کے نقصانات بھی ہیں. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ہے کہ آپ گرے اور آپ کا ناخن ٹوٹ گیا. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ناخن ٹوٹنے میں تکلیف کیسی ہوتی ہے، لیکن وہ بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہنس پڑے، مسکرا دیے، ہنسنے لگے. کسی نے کہا کہ حضرت، کیا ناخن ٹوٹنے پر، یعنی آپ گرے اور آپ کا ناخن ٹوٹا، تو کیا آپ کو اس سے تکلیف نہیں ہوئی؟ تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، تکلیف تو ہوئی ہے، لیکن اس تکلیف پر جو میں نے صبر کیا اور اللہ پاک جو مجھے اس پر اجر عطا فرمائے گا، اس اجر کے ملنے کی خوشی نے میری تکلیف دور کر دی. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، آزمائش آتی ہے، بیماری آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے، کوئی نہ کوئی پرابلم آتی ہے، تکلیف تو ہوتی ہی ہے، اور ان تکالیف پر صبر کرنا اسی پر اجر ہے. اور وہیں صبر نہیں کریں گے تو وہ بندہ بے صبری میں چلا جائے گا. تو اللہ پاک ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صابرین میں اللہ کر دے، بے صبری سے ہمیں بچائے. اور اس کے نقصانات بھی بہت ہیں، ہم مزید آگے چلیں گے. میں درود پاک کی فضیلت بھی عرض کرتا ہوں، اس کے بعد اپنے مہمانوں کا بھی تعارف کرواؤں گا کہ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ہمارے مبلغین بھی موجود ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے، پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ خوب 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 درود پاک پڑھتے رہیں. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمارے اس پروگرام گھر اور معاشرے میں ہمارے ساتھ جو ہمارے مبلغین ہیں، میرے دائیں جانب ہمارے محمد ریاض عطاری، ان کے ساتھ ہمارے محمد رضا عطاری مدنی، اس طرف ہمارے دل کی طرف ہمارے جنید رضا عطاری مدنی، اور ماشاءاللہ ہمارے ذاکر عطاری بھائی. تو یہ ہمارا ماشاءاللہ پروگرام ہے. بنگلہ دیش کے مبلغین بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارے رضا مدنی بھائی، ہمارے بیٹے، یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو انشاءاللہ کچھ بنگلہ، کچھ اردو، کچھ دونوں کو ملا کر اس طرح کا انشاءاللہ ایک سلسلہ چلے گا ہمارا یہ پروگرام. اور اللہ کی رحمت ہے، یہ دعوت اسلامی ہے کہ جہاں زبان، کلچر سب کو ایک ایسا کر دیتے ہیں کہ جیسے ایک خاندان. واقعی کئی ممالک میں ہمارا سفر ہوا، کئی ملکوں کے لوگوں سے ہماری ملاقاتیں ہوئیں، تو بظاہر کوئی ایسا تعارف نہیں تھا شروع سے، ایسا کئی لوگوں سے جیسے انڈونیشیا سے آئے، افریقن کنٹریز سے آئے، جب آئے تو ملاقات ہوئی. کئی ایسے لوگ تھے کہ وہاں کی لینگویج ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن یہ محبتوں کا رشتہ، یہ پیار کا رشتہ، یہ ایسا رشتہ ہے کہ جو دعوت اسلامی نے ہمیں دیا ہے، اور اسی کی برکت سے دعوت اسلامی بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اللہ کریم ہمیں اخلاص عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے. آج ہمارا جو ٹاپک ہے ریاض بھائی، بے صبری کے نقصانات. صبر کی تلقین تو لوگ کرتے ہی ہیں کہ بس صبر کریں، برداشت کریں، लेकिन बेसब्री क्या है, बेसब्री से कैसे बचा जाए, थोड़ा इसको हम आज वाजे करेंगे।
सब्र में जिस तरह फायदा है और इसका अज्र और जजा का भी कुरान और हदीस में आया है, तो बेसब्री के हवाले से भी है कि इसमें नुकसानात ही नुकसानात है। जैसे कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद किया सूरह मारिज की 19-21 नंबर आयात में, तर्जुमा कंजुल ईमान, बेशक आदमी बनाया गया है बड़ा बेसब्रा हरीस, जब उसे बुराई पहुंचे तो सख्त घबराने वाला और जब भलाई पहुंचे तो रोक रखने वाला। इस आयत करीमा के तहत सदरुल अफाजिल हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमतुल्लाह अल हादी खजाइनुल इरफान में इरशाद फरमाते हैं, यानी इंसान की हालत यह है कि उसे कोई नागवार हालत पेश आती है तो उस पर सब्र नहीं करता और जब माल मिलता है तो उसको खर्च नहीं करता, यानी कि कब कभी परेशानी आ गई तो इंसान इसमें सब्र नहीं करता, बेसब्री का मुजाहरा करता। जैसे पहले आपने जो वाकया बताया कि वो उन पर मुसीबत आई, नाखून टूट गया, लेकिन उन्होंने सब्र का मुजाहरा किया क्योंकि उनको जजा का पता था कि यहाँ सब्र करेंगे तो मुझे सब्र का अजर मिलेगा, और बेसब्री करे नाखून तो खुद ब खुद ठीक नहीं होगा, लेकिन सब्र करने का जो जजा है वो वहां से चला
सही
जाएगा।
सही
तो जहाँ सब्र करने से फायदा है तो बेसब्री का नुकसानात है, और इंसान के फितरी मामलात में बेसब्री है, और इसको कोई अगर सब्र के पैमाने में अपने आप को तोल ले तो बहुत सारे जो अल्लाह तबारक व ताला के तरफ से जो इनाम है उसका वो मुस्तहिक हो जाता।
क्या बात है मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, वाकई ये बात बहुत गौर तलब है कि बंदा बेसब्री करके परेशान भी होगा। अच्छा, ना खुद परेशान होगा बल्कि उसके साथ मुंसलिक जितने लोग होंगे वो भी आजमाइश में आ सकते हैं। घर है, घर में बेसब्री करेगा तो परेशान होगा, टेंशन में आएगा, और जब परेशान होगा, टेंशन में आएगा, एग्रेसिव मोड में जाएगा तो घर के तमाम अफराद परेशान होंगे। जहाँ काम काज करेगा वहाँ बेसब्री करेगा, यानी जहाँ सब्र का मौका था सब्र नहीं किया और बेसब्री की, तो इसके बहुत सारे दुनियावी नुकसान भी हैं कि बेसब्रे बंदे को गुस्सा जल्द आ जाता है, वो जल्दबाज होता है, हर मामले में जल्दी चाहता है, अपने मतलब का नतीजा चाहता है, तकलीफ आती है तो वावेला करता है, शोर करता है। तो ऐसा बंदा ना घर में एडजस्ट होता है, ना कारोबार में एडजस्ट होता है, ना दीनी मामलात में एडजस्ट होता है, परेशान रहता है। यहाँ तक कि जब सफ़र में होता है तो बेसब्रा आदमी जो है, ट्रैफिक जैम हो गया, जैसे ट्रैफिक जैम हो ही जाता है, दुनिया भर में होता है, इतनी ट्रैफिक, इतना क्राउड, अब ट्रैफिक जाम हो गया, बैठा बैठा वो कभी स्टीयरिंग पर हाथ मार रहा है, यार गाड़ियां नहीं चल रही, यहाँ भी जाम, यहाँ भी जाम, कभी पाँव पे हाथ मार रहा है, कभी यहाँ देख रहा है, कभी यहाँ देख रहा है। अच्छा, आप मुझे बताएं क्या क्या इससे ट्रैफिक चल पड़ेगा? इससे क्या वो अपने आप को और वो मकसद मुश्किल में डाल रहा है, मशक्कत में डाल रहा है? इसी तरह लाइट चली गई, करंट नहीं है, लाइट चली गई, यार लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, क्या ये कहने से लाइट आ जाएगी? सब्र करें, ठीक है। तो मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, बहुत सारे मामलात इंसान के बस से बाहर होते हैं, इंसान का उस पर को बस नहीं चलता। हादसा हो गया, बीमार हो गया, एक्सीडेंट हो गया, इंतकाल हो गया, क्या कर लेगा इंसान? तो सब्र करे, अजर कमाए। बेसब्री करके वो खुद भी परेशान होगा और अजर का सवाब भी चला जाएगा। तो चलते हैं रजा भाई की तरफ। रजा भाई, बेसब्री क्या फरमाएंगे?
सबर वो चीज़ है जिसे आधा ईमान कहा गया। सबर को जन्नत के ख़जानों में से एक ख़ज़ाना कहा गया, और सबर का फल कई चीज़ों को, भलाई और कामयाबी को सबर का फल करार दिया गया। सबर के फ़ज़ाइल जहाँ बयान हुए, अब हमें ये समझना है कि इंसान को सबर करना कब है। बेसब्री के नुकसान तो जो हैं उसमें सबसे पहले तो सबर करने की ज़रूरत कब कब आती है। इंसानी ज़िंदगी की दो सूरतें हैं। एक सूरत तो वो है कि जो हमें जो कुछ मिला वो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक था, यानी हमें जो मिला जैसा हम चाहते थे हमें वो मिला, एक तो वो सूरत है। और दूसरी सूरत ये होती है कि इंसान को जो मिला वो उसकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं था, वो उसकी ख्वाहिश से हटकर था। दो सूरत है, यानी जो आपके साथ जो मामला हो रहा है, या तो आप चाहते तो हो रहा है, या आपकी चाहत के अपोजिट है तो वो हो रहा
जो
है,
चाहा वो मिल गया या उसके अलावा
इसके
मिला,
अलावा मिला।
दो ही सूरतें हैं।
दो सूरत है इंसान की, और इन दोनों में सब्र है। इंसान इन दोनों सूरतों में सब्र का मोहताज है। कैसे? पहली सूरत, अगर इंसान जो चाहता था वो उसको मिल गया तो फरमाया गया कि जहाँ इंसान सब्र का ज़्यादा मोहताज है। कैसे? कि इंसान की ख्वाहिश और तबीयत के मुताबिक जो पेश आने वाले मामलात हैं, सेहत है, आफात से सलामती है, माल, इज्जत, अहलो अयाल की कसरत, असबाब का ज़्यादा हो जाना, पैरोकार का ज़्यादा हो जाना, मददगारों का ज़्यादा हो जाना, फॉलोवर्स का ज़्यादा हो जाना, या दुनियावी आसाइशों का उसके पास होना, ये वो चीज़ें हैं जो इंसान चाहता है और उसके पास है। मगर इन चीज़ों में भी सब्र करना है। अगर इंसान इनमें सब्र ना करे, इनमें ज़्यादती कर जाए, तो वो फिर नफसानी ख्वाहिशात की तरफ चला जाएगा और गुनाहों की तरफ चला जाएगा, वो सरकशी की तरफ चला जाएगा। और दूसरी सूरत वो कि जिस पर अमूमन हमारे जिसको सब्र कहा जाता है, कि जो हमें नहीं मिला या जो हम नहीं चाहते थे उस पर सब्र करना, ये दूसरी सूरत है। इसमें फरमाया गया ये वो सूरत कि जिसमें इंसान चाहता नहीं है, उसके तबीयत के बरखिलाफ अगर कोई चीज़ है तो उसमें सब्र करना। और वो तीन चीज़ें हैं। नंबर एक, एक तो वो मामलात कि जो बंदे के इख्तियार में हो, यानी इसमें तीन सूरतें बन
सही
जाती हैं। एक वो सूरत कि जिसमें वो चीज़ें कि जो हमारे इख्तियार में हैं उनमें सब्र करना, जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत, फरमाबरदारी, इसके जो मामलात हैं गुनाहों के और नेकियों के जो मामलात हैं उनमें, यानी इताअत के, इबादत के मामलात में सब्र। दूसरी सूरत वो कि बंदे को उस पर इख्तियार नहीं था मगर अब आ गया, अब उसे छुटकारा हासिल करना बंदे के इख्तियार में है, ये दूसरी सूरत हो जाती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर किसी ने आपको लगा दिया, एक थप्पड़ लगा दिया, मार दिया आपको, अब उसका मारना आपके इख्तियार में नहीं था, आपको मार दिया उसने, मगर अब बदला लेना आपके इख्तियार में है। अब उससे बदला लेना है या नहीं लेना ये आपके इख्तियार में है,
सही
इस पर सब्र करना। अब इस पर क्या हुआ, अगर वो रुक जाता है तो ये सब्र है। तीसरी चीज के ऐसी तकलीफ का पहुंचना कि जो बंदे के इख्तियार में नहीं है,
सही
अनकॉमन चीज है, हो गई मुसीबत, आ गई आजमाइश, आ गई। अभी आपने फरमाया कि ट्रैफिक जाम हो गया, हो गया ट्रैफिक
सही
जाम, ठीक है, आ गया, अब जाम हो गया, अब क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता, इख्तियार में नहीं है। तो अमूमन इंसान आज के दौर में जिन चीजों को बंदे के इख्तियार में जो चीज होती ही नहीं है, और वो जब आ जाती है तो वो समझ ले कि उसमें बेसब्री का मुजाहिरा ज्यादा होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रोजे के बारे में बड़ी प्यारी बात फरमाई है, और वो फरमाई है कि जो रोजा है ना उसकी जगह मैं खुद दूंगा। वजह
वाह
कि रोजा जो है ये सबर का नाम है, यानी रोजा को अगर हम देखें, इबादत है रोजा, और इस इबादत में सबर मतलब भरा हुआ है कई सारी चीजों से। जब खाना नहीं होता, पीना नहीं होता, हालत खराब हो रही होती है, तो ना सिर्फ भूख और प्यास से सबर, बल्कि इसके अलावा जबान की एहतियातें, गुस्से का, चिड़चिड़ापन का हो जाना या दीगर कई मामलात का हो जाना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रोजे की जजा फरमाया कि रोजे की जजा मैं खुद दूंगा। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत सबर वाली चीजों को पसंद फरमाता है। तो हमें भी चाहिए कि सबर करें, क्योंकि सबर बहुत अजीम नेकी है, और सबर के बारे में कई फरामीन मुस्तफ़ा भी हैं। 70 से जायद मकाम पर कुरान मजीद फुरकान हमीद में सबर के फजाइल पर बयान हुआ है।
सब्र के तीन मर्तबे हैं। नंबर एक, गुनाहों से सब्र करना, यानी
माशाल्लाह,
गुनाह से बचना। नंबर दो, नेकियों पर सब्र करना,
वाह,
यानी अपनी ताकत के मुताबिक हमेशा नेक आमाल करना। नंबर तीन, मुसीबतों पर सब्र करना। उन सबसे
माशाल्लाह,
आला मर्तबा ये है कि शहवात यानी नफसानी ख्वाहिशात से सब्र करना, क्योंकि ये औलिया और सिद्दीकीन का मर्तबा है।
क्या बात है, क्या
वाह
बात है। रब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ना सूरह अनफाल के अंदर कि वस्बिरू इन अल्लाह मअ अस्साबिरीन,
सही,
कि और सब्र करो, बेशक अल्लाह सब्र वालों के साथ है।
बेशक बड़ी प्यारी बात मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, बेशक अल्लाह सब्र वालों के साथ है। अल्लाह पाक हमें सब्र वाला बना दे। बाज़ औक़ात खिलाफ मिजाज बात हो जाती है, ऐसी बात जो हमें नागवार गुजरी, किसी ने कह दी, अब हमने उसकी भड़ास निकाली, उसको रिप्लाई किया, उसको भी सुनाई, किसी ने कहा कि भाई सब्र कीजिए, बड़ा सब्र ही तो कर रहा हूँ, तो आप गौर कीजिए कि अच्छी खासी आपने भड़ास निकाल ली, जितना कुछ सुनाना था सुना दिया। तो कहते हैं ना, सब्र तो पहले सदमे पे किया जाता है, मौत की खबर मिली किसी की तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये पढ़ना चाहिए। और इसी तरह और भी ऐसे मामलात हैं कि अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहें। कई ऐसे मामला, जैसे रज़ा भाई ने बताया, कई ऐसे मामलात हैं जो इंसान के बस से बाहर हैं। ज़िंदगी मौत हमारे इख्तियार में नहीं है, बीमारी और शिफा हमारे इख्तियार में नहीं है। तो जो चीज़ हमारे इख्तियार ही में नहीं, उसमें सब्र करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अल्लाह की नेमतें भी तो अल्लाह ने हमें कितनी अता फरमाई है। तो याद रखिए, कि ना शुक्रा और बेसब्रा बंदा अल्लाह पाक को पसंद नहीं है, पसंद नहीं है। देखिए मैं आपको एक हदीस पाक बताता हूँ, हज़रत सैदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि सरकार वाला तबार, हम बेकसों के मददगार, शफीए रोज़े शुमार, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अपने रिज्क पर राजी ना हो और जो अपनी बीमारी की खबर आम करने लगे और इस पर सब्र ना करे, इसका कोई अमल अल्लाह पाक की तरफ बुलंद ना होगा और अल्लाह अज़्ज़ा वजल इससे इस हाल में मिलेगा कि वो इस पर नाराज़ होगा। अल अमान, अल अमान। तो अल्लाह पाक हमें साबिर और शाकिर बनाए, बेसब्री से बचाए। पहले तो थोड़ा सा हमें देखना चाहिए, कोई भी ऐसा मामला हो पहले थोड़ा ठंडा हो, नॉर्मल हो, फिर गौर करें कि मैं क्या करूं। लेकिन रिएक्ट ज़बान से नहीं होता, बॉडी से भी होता है, अंदाज से भी होता है। तो हमें अपनी बॉडी से भी ऐसा को रिएक्ट नहीं करना कि हमारा अंदाज बताए कि ये बेसब्र आदमी है। जैसे बात करने में भी कई लोग अपनी को बात करनी है, अब मौका नहीं मिल रहा, अब वो बात को रोकना या उसकी बात सुनना, यहाँ भी बड़ी बेसब्री होती है। कहते ना, बात को काटे ना, सामने वाले की सुने, लेकिन हमने तो अपनी सुनानी है। तो यहाँ भी एक मौका है कि सब्र किया जाए और बेसब्री से बचा जाए। स्पेशली मैं यहाँ एक तो बात करने वालों को, कि ये बात काटना भी दिल आज़ारी का सबब बन सकता है। इसी तरह गाड़ी चलाने वालों को भी अर्ज करूँगा, स्पेशली बाइक, ये भी होता है कि शॉर्टकट, बेसब्री, यहाँ से निकले, यहाँ से निकले, यहाँ से निकले, और ऐसे में अगर कहीं गाड़ी लगी और दुनिया से निकल गए, फिर कितनी जल्दी पहुँच जाएंगे। फोर व्हील भी देखा हाईवे पर, बाज़ुका कार वाले, बस वाले, ट्रक वाले, और इतना रफ चलाते हैं, कितने मिनट पहले पहुंच जाएंगे आप। कहते हैं ना कि देर से पहुंचना ना पहुंचने से बेहतर है। अक्सर जो हादसा आते हैं, अक्सर उसमें एक फैक्टर बेसब्री का भी है। बिलफर्ज कोई गया, किसी ने किसी को ओवरटेक किया, अब उसको जुनून चढ़ता है अंदर, जोश चढ़ता है कि यार ये मुझे क्रॉस करके गया, मैं भी तो ऐसा ड्राइवर, अब उन दोनों की लगेगी रेस। पर अल्लाह ना करे कहीं गाड़ी टकरा गई तो फिर क्या होगा, खुद भी गए, गाड़ी भी गई, पैसेंजर भी गए। तो यहाँ सब्र कर लेते, कोई बात नहीं भाई, ठीक है आप आधा घंटा पहले चले जाएं, मैं आधा घंटा बाद आ जाऊँगा। तो मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, दुनिया में कई ऐसे मामला होते हैं कि बंदा सब्र करे, बर्दाश्त करे, बेसब्री का मुजाहरा ना करे। जैसे मैंने बातचीत का कहा कि बात करनी है, अब हमें सब्र करें, इसी तरह किसी की बात को बर्दाश्त करें। किसी ने कोई ऐसी बात कह दी तो पी जाएँ, कोई बात नहीं, वहाँ बेसब्री को उसको सुनाना, अपने दिल की भड़ास निकालना। टॉपिक बहुत लंबा है, और भी हमारे मुबल्लिगीन मौजूद हैं, तो अब यहाँ चलते हैं जुनैद मदनी भाई की तरफ। के जुनैद मदनी भाई, बेसब्री क्या है और कैसे बचा जाए और क्या किया जाए?
जिस तरह हमें सब्र के फवायद देखने को मिलते हैं, इसी तरह कभी कभी इस तरह भी हो जाता है कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस हो जाता है बेसब्री के हवाले से, कि बेसब्री में क्या होता है, क्या नतीजा निकलता है। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं बस में कहीं पर जा रहा था, बस में था, तो गाड़ियों की रश लगी और बस वाले ने धीरे से चलाया, तो जो पैसेंजर थे वो सब्र नहीं कर पाए, वो चीखने लगे, चिल्लाने लगे और बस वाले को सुनाने लगे, ड्राइवर को। फिर बस वाले ने क्या किया कि उसको भी गुस्सा आ गया, वो अब तेज़ चलाने लगा। अब जब तेज़ चलाने लगा तो सामने कोई गाड़ी या कुछ आ गया, तो उसने ब्रेक मारा अचानक और सब गिरे। फिर कुछ गुस्सा हुए और गुस्सा होकर सामने बढ़े और बस वाले के साथ जो ड्राइवर था उसके साथ कुछ हाथापाई भी हो गई। अब बस वाला कहता है कि नहीं, मैं बस नहीं चलाऊंगा।
अच्छा,
वो नाराज हो गया। फिर उसको समझा कर फिर कुछ इस्लाम भाइयों ने समझाया उसको, फिर वो बस चलाने लगा। फिर चलाते चलाते जब ब्रेक टाइम हुआ, फिर उसने क्या किया, यहाँ पर भी उसने भी बेसब्री का मुजाहिरा किया। उसने एक लाठी निकाला, वो शायद रॉड थी या कुछ थी इस तरह का, तो उससे उसने वो जिसने उसको लात मारा था और जिसने उससे मारपीट की थी उसके सर पर दे मारा।
या अल्लाह, यानी अभी भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ,
दे मारा। अब जो अब सब्र का मुजाहिरा नहीं कर रहे थे, इसमें से कुछ इस तरह के भी पैसेंजर थे जो ड्राइवर को बुरा भला कह रहे थे, तो वो डर के मारे निकल गए, सामान छोड़कर ही वो भाग गए। फिर वो बस पहुंचते पहुंचते जहां पर हम 5 से 6 घंटे पर पहुंच जाते हैं, तकरीबन 9 से 10 घंटा लग गया हमारा पहुंचते
यार
पहुंचते।
नसीहत वाला मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, एक पैसेंजर और एक ड्राइवर की बेसब्री ने कितने लोगों को तकलीफ़ में डाल दिया। तो वाकई जुनैद भाई, ये तो आपने एक बड़ा अपना प्रैक्टिकल और नसीहत वाला, और वाकई न जाने ऐसे कितने
जी
वाकयात होते होंगे कि बेसब्री की वजह से खुद इंसान को खुद भी तकलीफ़, दूसरों को भी तकलीफ़। ये जो हमारे जुनैद मदनी भाई ने बताया ना मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। ये भी हमने हमारे किसी बड़े ने समझाया था कि जब ड्राइव कर रहा हो कोई, ड्राइविंग सीट पर कोई बैठा हो, ड्राइवर हो या कोई भी गाड़ी ड्राइव कर रहा हो, उसको गाड़ी चलाने के दौरान बार बार ना टोकिए, उसको बार बार ना कहिए भाई तेज़ चलाएं, स्लो चलाएं, कैसे चला रहे हैं, आपको चलाना नहीं आती, आप ऐसे चला रहे हैं, एकदम ब्रेक मार रहे हैं, कभी भी डिस्टर्ब ना करें। मेरा पर्सनल प्रैक्टिकल है कि जब बंदा ड्राइव कर रहा होता है, उसको कोई डिस्टर्ब करता है, तो ड्राइवर को पता नहीं उस वक्त क्या दिमाग में आती है कि वो और एग्रेसिव मोड में चला जाता है, जैसे वाकई इन्होंने बताया। और अच्छा, वो हेजिटेट हो जाए, कोई बड़ी शख्सियत बैठे हैं और उस दौरान ड्राइवर को बोले तो और वो टेंशन में आ जाए, डिप्रेशन में आ जाए। तो ऐसे में कभी रुक जाएं, कहीं रुकना हो, कोई स्टॉप हो, नमाज के लिए रुकें, खाने पीने के लिए रुकें, फ्यूल के लिए रुकें, वहाँ उसको प्यार से समझा दें। और अगर ना समझता हो तो फिर ड्राइविंग सीट पर ऐसे को बिठा दें जो समझदार हो, क्योंकि दौरान ड्राइव ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और अगर कोई ओवर स्पीड है या इस तरह रफ गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी रुकवा कर उसको प्यार से समझा देंगे, भाई आपकी भी जान है, हमारी भी जान है, थोड़ा एहतियात से चला लें, एहतियात बेहतर है। चलते हैं हमारे जाकिर अत्तारी भाई की तरफ। जाकिर अत्तारी भाई,
बेसब्री का कुछ वजाहत क्या है कि बच्चों के हवाले से कि ज़्यादा बच्चों से मिलना होता है ना कि इतना मिलेगा मुझे, इतना मिलेगा बच्चों से, इतना मिलेगा, तो ये भी बेसब्री का एक है कि इसमें भी नुकसान है ज़्यादा डिमांड करना। और बीमारी के हवाले से कोई टेंशन ना रखना, यानी बंदा चाहे कि मैं हर वक्त जो है ना कोई बीमार मेरे पास ना आए, बुखार ना आए, कुछ भी ना आए, तो अचानक जब बीमार पर पड़ जाते हैं ना तो फिर बेसब्री का एक वो आ जाते सामने, बीमार आ गया, मैंने क्या क्या ऐसा, बीमार क्यों आ गया, बच्चों मेरे साथ इस तरह क्यों कर रहा है, मुझे तो इतना मिलना था, इतना देना था, मुझे क्यों नहीं दिया। तो फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि तआला ये तीन चार जो है ना अपना किताब में लिखा है कि बेसब्री बंदा अपना लाइफ में, अपना जिंदगी में जब इसी तरह कुछ मामला इनके सामने आ जाते हैं, ज्यादा जो मिलना था उसे ज्यादा डिमांड हो, तो फिर ज्यादा मिलेगा मुझे, तो फिर वो बेसब्री का एक सामने आ जाता है कि मेरे साथ यूँ क्यों क्यों कर रहा है, बच्चों भी कर रहा है, सामने वाला भी कर रहा है, और बीमारी बार बार आ रहा है। तो फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि तआला ने फरमाया कि इसी तरह ज्यादा ना अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो मिला है उस पर शुक्रिया अदा करना, अल्हम्दुलिल्लाह जो मिला अल्हम्दुलिल्लाह।
माशा
क्या
माशा,
बात।
वाकई मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक ने जो दिया उस पर सब्र और शुक्र करें, अल्लाह पाक नेमतों में और इजाफा फरमाएगा और
इंशाल्लाह
नेमतें बढ़ा देगा। बेसब्र आदमी परेशान रहता है, आजमाइशों में रहता है, और कभी सैर नहीं होता, वो सैर नहीं होता वो इसलिए कि बेसब्र है ये। अच्छा, सब्र के मौके बहुत मिलते हैं, बच्चे घर में, सबके घरों में होते हैं, बहुत तंग करते हैं, ठीक ठाक तंग करते हैं, अब वहाँ बंदा बेसब्रा हो जाता है, वहाँ सब्र कर लें, घर का नुकसान हो गया, कोई गिलास टूट गया, कोई बल्ब टूट गया, अब टूट गया, सब्र करें, एहतियात भी करें, सब्र करें, गाड़ी लग गई, लग गई, एहतियात करनी थी, अब सब्र करें, कोई माली नुकसान हो गया तो सब्र करें, सब्र का अजर कैसे मिलेगा, आप क्या फरमाएंगे रियाज भाई? सब्र के जो है ना दो किस्में हैं। एक है मजमूम सब्र, इंसान कभी सब्र इसलिए करता है ताकि उसके बारे में कहा जाए कि मुसीबतें बर्दाश्त करने पर उसका सब्र कितना कामिल और मजबूत है, और कभी इसलिए सब्र करता है ताकि लोग बेसब्री का मुजाहरा करने पर उसे मलामत ना करें और दुश्मन उसके बेसब्री पर ना हंसे। इन तमाम उम्र में अगरचे जाहिरी तौर पर सब्र ही किया जा रहा है, लेकिन ये अल्लाह ताला की रिजा के तलब में नहीं बल्कि गैरुल्लाह के लिए किया गया है, इसलिए ये सब्र मजमूम है। और दूसरा जो कहा गया है वो है काबिले तारीफ सब्र। ये वो सब्र है कि जो इंसान अल्लाह ताला की रिजा हासिल करने के लिए करे, और जो मुसीबतें नाजिल हुए उन पर सब्र करने का अज्र व सवाब अल्लाह ताला ही से तलब करे।
वाह
यही सब्र जो है अल्लाह तबारक व ताला को पसंद है, और ये अल्लाह ताला की रिजा के लिए है जिसको अल्लाह तबारक व ताला पसंद फरमाता। यानी आपने कहा ना कि लोगों को दिखाने के लिए भी सब्र होता, तो उसमें तो सवाब है ही नहीं,
दिखावा हो
सब्र
जाएगा,
दिखावा
रियाकारी
हो
हो
जाएगा।
जाएगी, वो अमल अल्लाह के लिए तो ना हुआ ना।
सब्र के जहाँ फजाइल बयान फरमाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, वहाँ एक और बात है। सबसे पहले इस चीज़ को हम समझें कि सब्र इंसान करता कब है। इंसान सब्र जब ही करेगा जब कोई मुसीबत आएगी। जैसे मैंने अर्ज किया पहले कि इंसान की जो हालत है वो दो किस्म की है। जब कुछ उसको उसकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं मिला तो अब वो उस पर सब्र करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जिससे भलाई का इरादा फरमाता है अल्लाह उसे किसी मुसीबत में मुब्तला फरमा देता है।
सुभान
यानी अब हम ये सोचें कि मैं तो जनाब बहुत परहेजगार, नमाजें भी पढ़ता हूँ और मैं जनाब बहुत कुछ अच्छे आमाल भी करता हूँ, सदका भी देता हूँ, बहुत सारे अच्छे आमाल करता हूँ, मगर मेरे साथ मुसीबत आती ही क्यों है या मेरे साथ ही क्यों आती है। अच्छा, हम तो कह रहे हैं कि जी सब्र कीजिए और बेसब्री के नुकसान हैं, तो क्या खूब फरमाया गया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे मुसीबत में मुब्तला कर देता है। अब मुसीबत आएगी तो सब्र करेगा। फिर मजीद आगे एक रिवायत है कि सैयदना अनस रजी अल्लाह तआला से मरवी नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद
सुभान
फरमाया कि दो घूंटों से बढ़कर कोई घूंट ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक पसंदीदा नहीं। घूंट यानी जो हम पीते हैं पानी का भी घूंट होता है।
जी
तो दो घूंट, नंबर एक गुस्से का घूंट जिसे बंदा बर्दाश्त करते हुए पी ले, नंबर दो मुसीबत का घूंट जिसे बंदा सब्र करते हुए पी ले।
वाह
ये दो घूंट हैं,
सुभान
अल्लाह रब्बुल इज्जत को बहुत पसंद है। इसी तरह आगे फरमाया दो कतरों से बढ़कर कोई कतरा अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक पसंदीदा नहीं। नंबर एक राह खुदा में बहाया जाने वाला खून का कतरा, नंबर दो रात की तारीकी में सजदे की हालत में निकलने वाला आंसुओं का कतरा जिसे अल्लाह के सिवा कोई ना देख रहा हो। और
सुभान
फरमाया गया दो कदमों से ज्यादा कोई कदम ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक पसंदीदा नहीं। नंबर एक फर्ज नमाज के लिए उठने वाला कदम, क्या खूब। और दूसरा सिलाए रहमी के लिए उठने वाला कदम। ये पूरी एक रिवायत है। और अगर हम इसमें स्टार्ट में देखें कि सबर का घूंट हम आजकल उर्दू में कहते हैं ना कि सबर का घूंट पी लें, तो ये वहीं से ही है कि सबर का घूंट जो है ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक एक पसंदीदा घूंट है, मतलब एक बहुत पसंदीदा है। अब बेसब्री के नाज़रीन नुकसानात ही नुकसानात हैं। बेसब्री बहुत सारी जगहों पर है और बेसब्री का होना और जल्दबाजी का होना अगर हम इन चीज़ों को देखें तो कई मकामात पर ही दोनों चीज़ें मुश्तरक पाई जाती हैं। इंसान बेसब्री जब करता है कि जब उसे जल्दबाजी होती है। मकतबतुल मदीना ने एक बड़ी ही प्यारी किताब जल्दबाजी के नुकसानात के हवाले से एक उसको पब्लिश किया है। वो दावत इस्लामी की वेबसाइट www.दावतइस्लामी.net पर भी मौजूद है और मकतबतुल मदीना पर भी मिल जाएगी। तो बेसब्री के जहाँ नुकसानात हैं वहाँ जल्दबाजी के भी नुकसानात हैं। जैसे हम अभी ट्रैफिक पे बात कर रहे हैं, गाड़ी पे बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों पे बात कर रहे हैं, ये बात जल्दबाजी है, जल्दी पहुँचना, जल्दी जाना,
जी
बहुत सारी चीज़ों पर जहाँ जल्दबाजी आ जाती है वहाँ बेसब्री का मुजाहरा बंदा करता है। फिर कहा गया कि किसी भी एक्शन के फर्स्ट 30 सेकेंड्स, जो शुरू के 30 सेकेंड है ना, ये माना करते हैं। आपको उस बाज होकर सब्र देखे किसी भी मामले पे सारी जिंदगी नहीं करना, सारी जिंदगी पे, सारी जिंदगी मतलब ये नहीं होता कि कोई एक मामला हो गया तो आपने सारी जिंदगी सब्र करना है, नहीं। कुछ लम्हे होते हैं, कुछ सेकंड्स होते हैं, कुछ मिनट्स होते हैं, जितना बड़ा गम उतना उसका सब्र का ड्यूरेशन। कहा गया इंसान की जिंदगी में अगर भूल ना हो ना, भूल जाना, फॉरगेट, अगर भूल ना हो तो इंसान पागल हो जाए। क्यों? कोई मर गया, बहुत आपका चहीता प्यारा, वालिदैन में से, औलाद में से कोई इंतकाल कर जाए, अगर इंतकाल करने के बाद कैसी कैफियत होती है। मगर आहिस्ता आहिस्ता निसियान, भूलना, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक नेमत है। यानी इंसान बाजू का देखे इंतकाल के मौके पर बेसब्री का इतना मुजाहरा होता है कि हत्ता के बाजू का लोग तो कुफरिया कलमात भी बक
बात
देते हैं। ये नुकसान है बेसब्री का, ये नुकसान है, लोग कुफरिया कलमात कह देते हैं। अगर इंसान मौत के वक्त सब्र कर ले, कितनी देर, जितना ज्यादा करीब होगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, महीना, 40 दिन, 40वें के बाद, बरसी, कितना, मगर सारी जिंदगी आपके साथ वो गम लगा नहीं
वो
रहेगा,
कैफियत नहीं रहेगा।
कैफियत नहीं रहता, बदल जाता है। मगर अगर सब्र कर लेगा तो उसका अजर अल्लाह रब्बुल इज्जत देगा। कहा गया किसी भी एक्शन का, किसी भी मामले का जो फर्स्ट 30 सेकेंड्स हैं ये आपके लिए मैटर करते हैं। अगर आप इसमें सब्र कर लेना बहुत सारी गलतियां खत्म हो जाती हैं। तलाक बेसब्री के मुजाहरे से होती है। आपको गुस्सा आया, फरमाया गया गुस्से को काबू कर लीजिए, गुस्सा गुस्से पर काबू पाइए, गुस्से का घूंट पी लें, खत्म कर दें गुस्सा। कितनी मिनट के लिए? 1 घंटा गुस्सा रहेगा, 2 घंटे रहेगा, मगर आपने अगर गुस्से में होकर जज्बातियत का मुजाहरा किया और शुरू के 1 30 सेकेंड या 1 मिनट के अंदर नाजरीन अगर आपने कुछ कह दिया, बेसब्री का मुजाहरा कर दिया, फिर आपके हाथ से वो बॉल निकलेगी जो आप चाहते हुए भी नहीं ले सकते। तो शुरू के 30 सेकेंड बहुत मैटर करते हैं। वैसे भी आजकल व्हाट्सएप पे 30 सेकेंड का स्टेटस है, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर 30 सेकेंड के अब वो आ गए हैं, तो 30 सेकेंड की एक बड़ी जो है ना वो बात है। और ये कहा गया 30 सेकेंड इंसान के लिए बहुत मैटर करते हैं। वो एक बड़ा प्यारा वाक्य है कि घर में लड़ाई बड़ी होती थी, तो कहा जी तावीज़ दे दीजिए। तावीज़ दिया तो कहाँ इस्तेमाल करना है? तो कहा गया जैसे गुस्सा है ना तो ज़रा ज़बान के नीचे रख लेना इसको, तो दांतों के दरमियान में इस तावीज़ को आपने रखना है। तो अच्छा जी ठीक है। अब जब भी उसको गुस्सा आया घर में एकदम बात, तो उसने कहा जी तावीज़ निकाला और रखा उसने दोनों उसके नीचे अपना दांतों के दरमियान में इसने रख लिया, रखा। और उसमें ये कहा गया कि जितना ज़्यादा गुस्सा है ना उतना तेज़ दबा देना है इसको, आप जितना गुस्सा बढ़े वो और तेज दबाए, और तेज दबाए। ठीक है जी। अच्छा थोड़ी देर के बाद गुस्सा खत्म, उसने तावीज निकाला फिर वो रख लेता, तो वो तो थोड़े दिनों के बाद घर का माहौल बड़ा अच्छा हो गया। तो जिसने तावीज दिया था उनके पास गया, बोला हजरत ऐसा क्या तावीज दिया है आपने यार, जब भी हमारे घर का माहौल ही अच्छा हो गया, जब गुस्सा आता है मैं तावीज रखता हूँ, तो ऐसा क्या तावीज है ये? उन्होंने कहा जरा तावीज निकालिए। तावीज निकाला, बोला खोलें, खोला तो कुछ भी नहीं था खाली। बोले ये क्या है? बोला असल में यही जो आपकी जबान थी ना यही मैटर कर रही थी, यानी जब आपको गुस्सा आ रहा था तो वो जो बेसब्री उस वक्त होती है इंसान के अंदर, अगर वो आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे और आप बोलते ही चले जाएंगे, तो आप वो बोलेंगे उलफुल बोलेंगे, फिर लड़ाई झगड़ा होता है। तो अब आपकी तावीज जो था वो यही था कि दो दो आपके जो दांत हैं इसके दरमियान में तावीज है, जबान आपकी हिलनी नहीं चाहिए, आप कंट्रोल, जबान कंट्रोल में है, इंसान कंट्रोल के अंदर है।
क्या बात
तो यही
है।
30 सेकेंड है, यही जबान है जो बहुत सारी जगहों पर इंसान के मामला खराब कर देती है।
वाकई जैसे रजा भाई ने बताया कि 30 सेकेंड्स ये बड़ा वो होता है, यही जो रजा भाई बता रहे हैं मैंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया और करना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन भी है, फैमिली मैटर्स भी हैं, और बाज़ुकात बड़े बड़े डिसीजन लेना पड़ते हैं, बाज़ुकात एक साथ बहुत सारे काम आ जाते हैं। तो इसी तरह एक तंजीमी मैटर था दावत इस्लामी का, तो वो था ऐसा कि मुसलसल मैसेजेस पे तबादला चल रहा था, तो फिर कुछ ऐसा उस मैसेजेस पे माहौल बना कि जो एकदम होता है कि बंदा क्या करे एकदम, तो फिर मैंने कहा इसको होल्ड करना चाहिए। आज रजा भाई ने जब फरमाया मैंने भी उस पर अमल किया, मैंने कहा अभी एकदम बहुत सारे काम जमा हो गए, मैं फ़ौरन रिप्लाई करूंगा तो ऐसा ना हो कि कुछ
इससे
रिप्लाई,
माहौल भी खराब हो जाता है।
मकसद था कि वो समझ नहीं आ रहा था उस वक्त, तो बंदा थोड़ा रुक जाए, स्टे कर ले, गौर कर ले, थोड़ा ठंडा हो जाए, कूल माइंड हो जाए, मामले को ठंडा होने दे, लेकिन इतना भी ना ठंडा होने दे कि वो जो जब करना है ये भी तो एक फैसला करना ही है। लेकिन वाकई हकीकत है कि गरम गरम जो खाएगा मुंह जल जाएगा, गरम गरम में हाथ डालेगा तो हाथ जल जाएगा। तो कभी घर में या कहीं ऐसा मामला हो तो वो थोड़ा अवॉइड करें, न्यूट्रल पोजीशन पर रहे। और मैं स्पेशली अपनी बहनों को, बच्चियों को, बेटियों को अर्ज करूंगा कि आप जब शादी होकर स्पेशली कहीं जाती हैं तो माँ बाप के घर से कहीं रुख्सत हो जाती हैं, तो अब माँ बाप के घर का माहौल अपना एक है, ससुराल का अपना एक माहौल है, अब वहाँ के माहौल में अगर आप एडजस्ट नहीं हो रही तो आपने सब्र करना है। वहाँ जाकर बेसब्री अगर आपने शुरू कर दी कि यहाँ का ये रूटीन, यहाँ का ये रूटीन, और पल पल की खबर अपनी माँ को अपने मैके में आप देती रहीं देती रहीं, और आप जो है न्यूज़ चैनल बन गई कि अम्मी आज ये हुआ था, आज ये हुआ था, और माँ भी कोई नादान माँ हो वो वहां से कहे अच्छा मेरी बेटी के साथ इतना जुल्म, सब बैठकर जो है वो खाते हैं, सब बैठकर ऐश उड़ाते हैं, मेरी बच्ची काम करती है, तो मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, घर सब्र से बसता है। अगर सब्र करेंगी तो घर बस जाएगा और बच भी जाएगा, और बेसब्री करेंगी तो घर उजड़ जाएगा, तबाह हो जाएगा। निगरानी शूरा का एक बहुत प्यारा जुमला है, बड़ा प्यारा जुमला, मुझे बड़ा पसंद है, मैं कई जगह इसको इजहार करता हूँ। और भी बड़ी तरबियत फरमाते हैं कि इंसान हालात से नहीं ख्यालात से ज्यादा परेशान होता है। हालात ऐसे नहीं होते, पर ख्यालात सोचे ये हो गया, ये क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, अरे छोड़े ना सब, खुश रहिए, खुश रखिए, और बेसब्री नहीं करें। बेसब्री करेंगे खुद भी परेशान, सब परेशान, इजी रहिए, कंफर्ट रहिए, इजी और बिजी रहिए। बेसब्री, इसके नुकसान, बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, बहुत सीखने के मदनी फूल हैं इसमें, اور اس ٹاپک سے متعلق آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں، آپ ذرا توجہ کے ساتھ یہ ویڈیو کلپ ذرا دیکھیے گا۔
یہ کہا جاتا ہے کہ ہر چیز میں سے حسن ظن دیکھنا چاہیے، یعنی کوئی واقعہ آپ کے سامنے ہوا، آپ کی زندگی کے حالات ہیں، تو ان میں سے مثبت پہلو کی طرف نظر رکھی جائے اور منفی پہلوؤں کو اگنور کیا جائے اور مثبت پہلو دیکھے جائیں، اور واقعی ایسا شاید ہی کوئی واقعہ ہو جس کے اندر مثبت پہلو نہ ہو، سارے کا سارا ہی منفی پر مشتمل ہو۔ اب ایسا کرنا یعنی کسی بات میں سے مثبت پہلو تلاش کرنا، یہ ہوتا بڑا مشکل ہے، ایسے لگتا ہے اس کے لیے ٹریننگ کرنی ہوتی ہے، کیونکہ منفی پہلو تو ہمیں بغیر کسی کوشش کے بھی نظر آ جاتے ہیں، فوراً پتہ چل جاتا ہے جی اس میں یہ 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 باتیں نیگیٹو ہیں۔ پازیٹو ڈھونڈنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، سر لگانا پڑتا ہے، توجہ دینی پڑتی ہے، اور اسی طریقے سے صبر ہے، شکر ہے، یہ بھی آسان تو نہیں ہوتے، جب وہ معاملہ انسان پر ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ صبر اور شکر جو کتابوں میں پڑھے یا بیانات میں سنے تو یہ کتنا مشکل ہوتا ہے کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں ایسا لگتا ہے کہ خاص ٹریننگ مانگ رہی ہیں، جس طرح کہ انجینئر ٹریننگ کرتا ہے تو انجینئر بنتا ہے، ڈاکٹر ٹریننگ کرتا ہے تو ڈاکٹر بنتا ہے، تو ان کاموں کے لیے بھی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب وقت آتا ہے اس وقت پھر انسان اتنا کامیاب نہیں ہو پاتا۔ تو حضور آپ سے یہ سوال ہے، یہ ارشاد فرمائیے کہ ان چیزوں کی ٹریننگ کیسے کی جائے۔ اب ہر بندہ اس میں ماہر بھی نہیں ہوتا، ہمارے ارد گرد کے جو لوگ ہیں انہی کو دیکھ کے جیسا ماحول ہمیں ملا اسی ماحول کے اندر میں رہنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی تبدیلی بھی لے کر نہیں آتے۔ تو کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ صبر کی، شکر کی، حسن ظن رکھنے کی اس کی ہمیں تربیت ہو جائے، اور اس تربیت کے کیا ذرائع ہو سکتے؟
سبحان، اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ صبر کورس، شکر کورس جاری کیا جائے، کہ وہ صبر کورس وہ کرے گا جو خود بھی صابر ہو، شاکر ہو، نام تو صابر شاکر ہوتا ہے جب گھومتی ہے، دوبارہ ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ صبر دشوار ہوتا ہے، بعض وہ کا چھوٹی سی مصیبت آتی ہے تو صبر آسان ہوتا ہے، بڑی اس سے بڑی اس سے بڑی تو پھر یہ کہ صبر بھی اتنا ہی دشوار ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ پاک امتحان میں نہ ڈالے، امتحان میں آ جائے نا تو پھنس جائے۔ صبر پر بہت زوردار کوئی بیان کرے اور لوگ بھی اشش کر اٹھیں کہ سبحان اللہ، یہ تو بھائی موجودہ دور میں صابروں کا سردار لگتا ہے، اور یہ جیسے ہی فارغ ہو اور اس کو خبر ملے کہ وہ آپ کی عمارت کی چھت گر گئی ہے اور آپ کے دو بچے اس میں دب کر فوت ہو گئے، اب پتا چلے گا کہ یہ صبر کس کو کہتے ہیں۔ صحیح بات ہے کہ جب سر پہ آ کے پڑتی ہے تو صبر پتا چلتا ہے کیسے ہوتا ہے۔ امام علی مقام کر گئے صبر، امام حسین، جوان علی اکبر کا لاشا خون میں نہایا ہوا سامنے دھرا ہے، اور صبر، علی اصغر 6 مہینے کے بازوؤں میں اٹھائے ہوئے ہیں، تو تیر آ کر حلق پر لگتا ہے اور آپ جرجری لے کر شہید ہو جاتے ہیں، باپ ہے کہ صبر کر رہا ہے، ماں ہے صبر کر رہی ہے، تو یہ حضرات صبر کر گئے۔ پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام الصابرین ہیں، صبر کرنے والوں کے امام ہیں، ان پر جو مصائب و آلام آئے کسی پر نہیں آئے، اتنے صبر ہی کیا ہے۔ یہ ہم لوگ خالی باتیں کرتے ہیں، صبر کرنے والے کر گئے، لیکن کوشش کا دامن ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے، بے صبری کے سارے ریکارڈ توڑ کر پھر کہا جاتا ہے کہ ہم نے صبر ہی کیا ہوا ہے۔ کوئی کہتا ہے نا صبر کرو، ہاں بھائی ہم نے صبر کیا ہے، اور یہ بک 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 کر کے گلا تھک گیا تو اب صبر کر رہے ہیں، تو یہ اس کو صبر نہیں کہتے۔ حدیث پاک میں صبر اول صدمے پر ہے، پہلے صدمے پر صبر ہے، جو ہی صدمہ آیا صبر ہے، صبر کر دے، یہ بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ بچے کو کوئی خراش آتی نا معمولی، اس کو واضح کرتا تھوڑا رگڑ گیا کہ دیکھو ابو امی مجھے یہاں لگ گیا، تو لال ہو گیا تو امی بیٹا بچ بچ کرے گی، اس کا پگار مل جاتا ہے۔ یہ بچہ ہم کو سکھا رہا ہوتا ہے کہ میں تو یہ بھی دکھاؤں گا، میں تو ہر جگہ کا دکھاؤں گا آپ کو، معمولی نشانوں کو رگڑ رگڑ کے لال کر کے دکھاؤں گا، مجھے دیکھ لو یہ لگ گیا۔ آپ نہیں کیا کرو ایسا، آپ کریں گے تو بے صبرے کہلائیں گے، میں بھلے کروں، میرے اوپر کوئی قلم نہیں چلتا، بچے پر تھوڑی قلم چلتا، तो यानी यूं अगर हम देखें ना तो हर मामले में बेसब्री है। पड़ोसी बहुत तंग करता है, घर में ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, माँ बीमार है, बाप बीमार है, फलां, बिना ज्यादा जरूरत है कहे, खुद भी बीमार है, माँ बाप को ना बताए, बाल बच्चों को ना बताए, अगर जरूरत नहीं है तो, जरूरत है तो बताए, लेकिन हम लोग ये कर नहीं पाते। यूं हमारा सवाब जो है ना वो आगे पीछे हो जाता है। है सब्र तो खजान है फिरदौस, आशिको आशिक के लब पे शिकवा कभी भी ना आ सके। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
जी मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, ये वीडियो के लिए आपने देखा नसीहत के मदनी फूल हैं, तो सब्र की आदत बनाइए, बेसब्री से बचिए। जुनैद मदनी भाई,
इसका एक पॉइंट ये भी है कि बंदे में ठहराव हो,
सही, बेसब्रा ना हो आदमी,
बेसब्रा ना हो, वरना देखा जाता है इसके पास कोई मसाला आया है, वो क्या ऐसा हो गया है, चलो ये कर दो, तो ये काम खराब हो जाता है।
सही,
तो ठहराव बहुत जरूरी है और ये भी सबर से रिलेटेड ही है।
क्या बात,
कि सबर से ही ये ठहराव बंदे में आता है कि जब कोई मुसीबत आती है या कोई बात वो सुनता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अगर किसी जिम्मेदारी पर हो या किसी मनसब पर हो तो जो उसके मातहत होते हैं तो वो कभी कभी इस तरह के बातें कर जाते हैं, या वो चाहते हैं कि कोई फैसला जल्द हो जाए, वो बेसब्री का मुजाहिरा करते हैं। अब अगर जो उस मनसब पर है या घर में गार्डियन है, कोई बड़ा है, अगर वो भी वो बेसब्री का मुजाहिरा करे और उनको डांट दे कि तुम्हें समझ में नहीं आती है, मुझे पता है, तो ये दो तरफ चले जाएंगे दोनों।
ये बड़ी अच्छी बात बताई मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे जुनैद मदनी भाई ने, कि दावत इस्लामी से भी हम वाबस्ता हैं, और भी देख लें अपना रूटीन, कि कभी बड़े की बात पर मातहत सब्र कर ले, कभी मातहत बड़े की बात पर सब्र कर ले, यही फैमिली लाइफ है, यही बिजनेस है। बेसब्री से, बदएतबारी से बिजनेस टूट जाते हैं, घर टूट जाते हैं, घर बिखर जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन दावत इस्लामी इतनी बड़ा एक नेटवर्क है, इतनी बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है, और अल्लाह की रहमत से इसमें इताअत, प्यार, मोहब्बत, और ये, और मैं साथ साथ ये भी अर्ज करूँगा कि थोड़े थोड़े कमेंट्स, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म की तरफ भी है। एक तो ये है कि जामियातुल मदीना, ये दावत इस्लामी का एक इदारा है जहाँ दरस निज़ामी कराया जाता है, आलिम कोर्स होता है, और इसी तरह मदरसतुल मदीना हिफ्ज़ो नाज़रा, इस्लामी भाई भी, इस्लामी बहनें भी, तलबा तालिबात, असातिज़ाए किराम, स्पेशली तलबा। तो पहले मैं रज़ा भाई से अर्ज़ करूँगा कि आपने भी माशाल्लाह दरस निज़ामी किया, जुनैद भाई भी मदनी हैं, उन्होंने भी दरस निज़ामी किया। तालिबे इल्म कई ऐसे मैंने भी देखे हैं, आप तो खुद स्टूडेंट लाइफ आपने जामियतुल मदीना की गुजारी है, उनसे सब्र नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता, बेसब्री होती है, और कई ऐसे हैं जो रास्ते में से ही चले जाते हैं, एक तादाद होगी, हो सकता है मैं देख रहे हूँ, अव्वल तो उस पर सब्र कैसे करें, और अगर चले गए तो फिर वापस कैसे आएँ।
तालिबे इल्म की ज़िंदगी का पहला सबक, चाहे वो कोई भी हो, तो उस्ताद साहब यही सिखाते हैं कि बेटा रास्ते के अंदर इल्लत, किल्लत और जिल्लत ने आना है।
अच्छा, इल्लत, किल्लत और जिल्लत,
जिल्लत ने आना है।
क्या होगा भाई?
ये इल्लत का मतलब बीमारी,
अच्छा,
और किल्लत का मतलब फाइनेंशियली इश्यूज, माली मुश्किलात, कमी का हो जाना, और जिल्लत यानी कि उसमें तुरान तदरीज पढ़ाते हुए पढ़ते हुए आपस में तालिब इल्म का उस्ताद का बिहेवियर, रवैया, बाजू
लोग कहेंगे बच्चा आप बनने जा रहे हो, क्या कर रहे हो,
इसमें सोशल बिहेवियर आ जाता है। तो ये तीन चीजें आनी है, इन तीन चीजों का हल एक ही है, वो है सब्र। यानी इल्लत आपके पास आ गई, बीमारी आ गई, हो गई, मगर अगर उस पर सब्र ना करें तो आप पढ़ाई छोड़ सकते हैं, किल्लत आ जाती है,
आ जाती है,
और अगर किल्लत आ गई अब उस पर सब्र करना है और उसका हल निकालना है, कोई सॉल्यूशन करना है उसका, तो वो भी दूर हो जाएगी, आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे, और जिल्लत इस पर ज़्यादा सब्र करना पड़े। तो ये तीनों चीज़ें हैं, अगर बेसब्री करेंगे तो नुकसान यही है कि आप अपनी स्टडी को डिस्कनेक्ट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। मेरी अपनी पढ़ते हुए दौरान तालिब इल्मी, इन तीनों में से कोई एक तो आया, और
तीनों नहीं आए,
हाँ एक तो आया, दो तो आए,
दो तीसरा भी देखें, याद करें आ जाएगा।
नहीं नहीं, दो तो आए, तीसरे का अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी नेमतें। तो उसमें वही है कि सब्र, वरना अगर उस वक्त शायद اچھی صحبت نہ ہوتی اور یوں کہہ لیں کہ صحبت کا اچھا نہ ہونا اور بے صبری کا کر جانا اور ان دونوں سے بڑھ کر آپ کا نہ ہونا. آپ نے جس طرح ہمیں صبر کی تلقین کی اور جس طرح سمجھایا اس وقت, کئی ایسے میٹرز پڑھتے ہوئے آئے ہیں کہ اگر اس میں آپ ہمیں صبر کی تلقین نہ کرتے, سمجھاتے نہیں, تو شاید ہم بھی آج کہیں اور گھوم رہے پھر رہے ہوتے. تو اس وقت صبر کیا اور اس کا حل نکلا اور اللہ پاک کی رحمت سے الحمدللہ آج پڑھا ہے الحمدللہ.
میں مدنی چینل کے ناظرین, رضا بھائی نے جو بتایا, جب یہ جامعۃ المدینہ میں داخل ہوئے, اس سے پہلے ان کو مدرسۃ المدینہ میں داخل کروایا تھا حفظ کے لیے. جب ناظرہ ان کا ہوا تو میں نے ان کے استاد صاحب سے مشورہ کیا, تو ان کا یہ تھا کہ آپ ان کو حفظ میں نہ ڈالیں, درس نظامی میں ڈال دیں. اگرچہ عمر چھوٹی تھی, تو پھر ان سے بھی مشورہ ہوا اور پھر گھر میں بھی مشورہ کر کے, اور مجھے یاد پڑتا ہے میں نے اپنے شاید امیر علیہ سنت سے بھی مشورہ کیا تھا, تو امیر علیہ سنت نے فرمایا تھا کہ بچے کا جہاں رجحان ہو, بچے کی جہاں طبیعت ہو, اس کو وہیں کر دیں جہاں وہ مائل ہو, اس پر زبردستی نہ کریں, پریشر نہ ڈالیں. اگر اس کا حفظ کا ذہن ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو آپ پریشر نہیں ڈالیے گا, پھر درس نظامی میں کر دیں. تو اللہ پاک کی رحمت سے ان کو درس نظامی میں داخل کروایا. اچھا, شروع کا جو ہوتا ہے اسٹیج, پہلا سال دوسرا سال, یہ مشکل لگتا ہے. تو تقریباً اسٹوڈنٹ جامعۃ المدینہ کے, میرا کافی واسطہ رہا ہے کئی جامعۃ المدینہ میں جانا ہو رہی ہے, تو پہلے دوسرے درجے میں جو نا ایک تو پڑھائی مشکل لگتی ہے, پھر ایک دم روٹین چینج ہوتا ہے, جس طرح رضا بھائی نے فرمایا علت قلت ذلت, تو دو تو ان کے پاس بھی آیا, معاملات اب کیا ہے وہ میں بعد میں پوچھوں گا. تو جو ہے آتا ہے, یہ آزمائشیں آتی ہیں. اب فیملی میں ایسا بیک گراؤنڈ نہیں ہے کہ کوئی درس نظامی کر رہا ہو, اب وہ عالم کورس کریں, کوئی دنیاوی بچے جو ہیں وہ دنیا کی تعلیمیں حاصل کر رہے ہیں اور یوں اپنا ڈریس پہن رہے ہیں, تو یوں بعض اوقات وہ خاندان میں اٹھتے بیٹھتے شرمندگی سے ایسی فیل ہوتی ہے, لیکن جب گھر میں ماحول ہو, گھر والے مضبوط ہوں, تو بچہ بھی مضبوط ہو ہی جاتا ہے الحمدللہ الحمدللہ. اب ہمارا پروگرام جو ہے وہ اینڈ کی طرف ہے, پروگرام ہمارا ٹائم ختم ہونے لگا ہے, تو رضا بھائی سے تو ہم نے کمنٹس لے لیے, کچھ مزید بھی کچھ کہنا چاہیں تو انشاءاللہ ان کو موقع ملے گا. ریاض بھائی کچھ مزید فرمانا چاہیں کچھ بے صبری سے متعلق, کہ بے صبری کے موقع کہاں کہاں ہوتے ہیں اور کیسے بچا جائے.
بے صبری کے موقع جو آتا ہے تو اس میں صبر جو ہے یہ لازمی ہے. اب مثال کے طور پہ اگر کوئی پریشانی آ گئی تو اب لوگوں کے سامنے جا کر کہنا
صحیح,
تو یہ بے صبری ہے. صبر کیا جائے, اب یہ نہیں کہ کہیں بھی کہنا منع ہے, اب وہ موقع محل کے تحت ہی ہے,
ضرورت
جہاں ضرورت
عالم دین ہے اس سے مشورہ کرنا,
مشورہ کر لیے, بیمار پڑ گیا ڈاکٹر کے ساتھ
مشورہ کرنا ہے, یا کوئی ایسا بندہ جس کو دنیا بھی بڑے تجربات ہیں اور بندہ سوچتا ہے کہ میں اس سے مشورہ
کر لوں,
تو بطور مشورہ کرنا اور ہے, اور اپنی مصیبت بیماری پریشانی کا رونا کچھ اور ہے.
جی, اسی طرح بیماری اگر آ گئی بس صبر کرو اب علاج نہیں کراؤ تو یہ بھی منع کیا گیا. اچھا, قرآن الکریم میں اس کا تعلیم دیا گیا ہے کہ اگر پریشانی آ جائے, مصیبتیں آ جائے, تو کہاں بولیں گے, کہاں یہ عرض کرنے سے یہ ہمارا یہ مسائل کا حل ہوگا. یہ قرآن الکریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ یوسف آیت نمبر 86 میں, یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول ہے, میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں,
واہ,
اور میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. سورت الجنان میں اس کے تحت کہا گیا کہ اس سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنا صبر کے خلاف نہیں. ہاں, بے صبری کے کلمات منہ سے نکالنا یا لوگوں سے شکوا کرنا بے صبری ہے.
کیا بات ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین, بعض اوقات تو بندہ اتنے منہ سے کلمات نکالتا ہے الامان اللہ کی پناہ کہ بندہ کفر تک بک دیتا ہے, تو ایسا نہیں ہو. اچھا, موسمی حالات ہیں, گرمی ہے, سردی ہے, لوڈ شیڈنگ ہے, اس طرح کے معاملات ہیں, تو حکومت ان کو کوسنا, باتیں کرنا, اس سے کیا ہوگا, حل تو کچھ بھی نہیں نکلے گا. صبر کریں, برداشت کریں, اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. میں جنید بھائی سے عرض کروں گا, جنید بھائی موسمی حالات, سخت گرمی ہے, کیسے صبر کریں, بہت سخت سردی ہے, کیسے صبر کریں, بارش ہے اور ہوئی چلی جا رہی ہے, پانی بھر گیا اور بڑا سیلاب جیسا آ گیا, کیسے صبر کریں یہ, اور مقصد ایسا ویدر ہے کہ طوفان آندھیاں ہیں, ایسا ویدر ہو گیا, تو ان معاملات میں کیسے صبر کریں.
بالکل, یہی تو اصل میں صبر جو ہے یہ مصیبت پر ہی ہوتی ہے صبر. ایسا نہیں ہے کہ میں خوش ہوں, سب کچھ میرے پاس ہے, میرے خواہشات بھی مکمل ہو رہے ہیں, موسم بہارا ہے اور میں صبر کر رہا ہوں, تو یہ تو صبر نہیں کہلائے گا. صبر جو ہوتی ہے وہ انہی حالاتوں میں ہوتی ہے کہ ہم کسی مصیبت پر پھنسے ہوئے ہیں, या जिस तरह आपने कई मौसमों का इरशाद फरमाया है, इसी तरह कभी कभी मौसमी मौसम जब वेदर चेंज होता है तो कभी कभी बीमारी भी
ठीक है
हमें आ जा करती है, कभी कभी बीमारी भी लग जाती है। जिस तरह अभी भी मैंने सुना है कि कई रिलेटिव और कई सारे इस तरह के हैं जो
वो वायरल फीवर चल रहा होता है, कोई फ्लू हो जाता है, कुछ
जी जी
हो जाती है।
इस तरह की बीमारी में होते हैं। तो इसमें सबसे यानी पहली बात तो है अल्लाह ताला से दुआ की जाए और ये पॉजिटिव थिंकिंग रखा जाए और देखा जाए कि हमारे साथ क्या क्या अच्छा हो रहा है, क्योंकि ये वक्त भी गुजर जाने वाला है।
सही,
ये वक्त भी ये भी जिंदगी का हिस्सा है। जिस तरह जामियातुल मदीना में भी चूंकि हमारा एक जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा जामियातुल मदीना में गुजरता है, तो जिंदगी के हिस्सों में से है कि कुछ परेशानियां कुछ चीजें मैं घर पर रहूं या जामियातुल मदीना में रहूं या कहीं और जगह पर हूं, ये होता ही है। तो सब्र की तो जरूरत हर जगह पर है।
क्या बात, क्या बात। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसे मैंने अर्ज किया ना, वेदर सख्त गर्मी है तो सब्र कीजिए, सख्त सर्दी है नहीं बर्दाश्त हो रही, सब्र कीजिए, बारिश है अल्लाह के हुक्म से हम इसको ना रोक सकते ना कुछ है, सब्र कीजिए आंधी तूफान। हाँ, अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए और अल्लाह से सब्र की।
अभी ईद का एक मदनी काफिला सफर में थे तो जिस मस्जिद में हमें ठहराया गया, काफ़ी गर्मी, यानी कि उसका उस मस्जिद का विंडो जो है वो अगरचा दो साइड में है लेकिन उस दो साइड में भी रूम बना हुआ है।
अच्छा,
यानी बाहर का कोई हवा आने का कोई गुंजाइश नहीं, और सख्त गर्मी भी अभी हो रहा था। तो काफिले में जो इस्लामी भाई थे वो बेसब्री का मुजाहरा शुरू हो गया कि हमें दूसरा मस्जिद दिया जाए, और जिम्मेदार से भी बात कर लिए, तो फिर माहौल ऐसा बना कि वो दूसरे तरफ जाने का ये हुआ। तो फिर इस्लामी भाई को समझाया गया कि भाई कहीं भी जाएंगे वहाँ भी तो गर्मी होगा, तो यहाँ जाइए करें। फिर मदनी काफिले के इस्लामी भाइयों ने मिलकर दुआ का तरकीब बनाया कि चले दुआ करते हैं बारिश हो जाए, ये हो जाए। तो ठीक मगरिब के वक्त दुआ हो दुआ किया गया और दुआ ऐशा से पहले पहले बारिश हो गई।
वाह,
क्या और वेदर ऐसा हो गया कि रात को काफिले वाले सुकून से सोए भी है माशाल्लाह, दूसरे दिन भी ऐसे हुआ, तीसरे दिन भी, लेकिन वहां सब्र का मुजाहरा किया गया। तो ये हुआ कि उस एरिया में अगर हम बेसब्री का मुजाहरा करते और चले जाते तो वहाँ एक था कि न्यू एरिया काम का वहाँ जरूरत थी, तो इससे तंजीमी तौर पे भी फायदा हुआ, लोगों को दीनी तौर पे भी फायदा हुआ। तो बाज दफा ये होता है कि हम अगर सब्र कर ले तो इससे दूसरे को भी हम फायदा पहुंचा सकते हैं, और बेसब्री करें तो खुद का भी नुकसान है और इसके जरिए दूसरे का भी नुकसान हो सकता है।
सही फरमा रहे। आखिर में मैं अपने जाकिर भाई से अर्ज करूंगा कि कोई मुसीबत है, परेशानी है, तकलीफ है, जा ही नहीं रही बंदे से, अब सब्र भी कर रहा है लेकिन उसको ये ख्याल आ रहा है कि मुझे पर किसी ने जादू करवा दिया, बंदिश करवा दी है और बस मैं क्या करूं, ये अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो क्या हर मुसीबत, हर परेशानी, क्या कोई जादू, कोई बंदिश, कोई काला इल्म, कोई इसी से होता है या क्या है?
रुकनेश्वरा हाजी अब्दुल हबीब भाई के साथ जब सफ़र में था उनसे कुछ चीज़ देखा और सीखा भी है। जिस तरह आपने बुलाया ना कि सब्र परेशानी हो, बीमारी हो, तो अब्दुल हबीब भाई ने फरमाया कि अगर जहन बन जाए कि मुझे सब्र करना है, जो भी है, जो भी आए, अगर बीमारी आए तो पहला तो सब्र करना है, शुक्रिया भी अदा करना है, अल्लाह इससे बड़ा बीमारी मेरे पास आए नहीं है, इससे बड़ा भी आ सकते
सही
नहीं आए। तो अब्दुल हबीब भाई ने बुलाया कि अगर बंदा जहन बना कर रखे कि जो भी है, अगर ये बोला जाए कि ये जहन बनाया जाए कि ये है मेरे लिए, अगर बीमारी छोटा कोई बुखार आ गया और बोले कि अल्लाह शुक्र है कि बीमार आ गया, इससे बड़ा कोई बीमार नहीं आया कि हॉस्पिटल में दो चार दिन गुजरना, ये शुक्रिया अदा करे, तो फिर बेसब्री का जो है ना नहीं बनेगा। दूसरा ये कि अब्दुल हबीब ने फरमाया कि टाइमिंग के हवाले से जब आपने शुरू किया सफ़र, रियाज भाई ने अभी फरमाया सफ़र के हवाले से, तो अब्दुल हबीब के ये मदनी फूल ना बेसब्री के हवाले से बहुत मुझे पसंद आया, मैंने भी अमल किया। बोला कि अगर किसी बंदा का सफ़र है, वो उनका मालूम है कि 20 घंटे का सफ़र है, तो वो फिर इनका टाइमिंग का जो है ना ड्यूरेशन का एक मैनेजमेंट बना ले, अभी विमान में 5 घंटा बैठना है मुझे, इस 5 घंटा में क्या करना है, विमान पे कुरान पढ़ना है, हदीस पढ़ना है, मुताला करना है, फैजान सुन्नत पढ़ना है, क्या करना है, ये 5 घंटा का काम रेडी करके फिर विमान पर बैठे, तो फिर बेसब्री नहीं आएगा क्योंकि मेरे हाथ में काम है। अगर दूसरा स्टेशन पर चले गए, एयरपोर्ट पर चले गए, वहाँ 6 घंटा स्टे है, वो सेकंड का क्या करना है, अवेलेबल अवेल नेट भी मिल गया, मेल पे जवाब देना है, व्हाट्सअप चेक करना है, ये 6 घंटा का काम भी आप रेडी रखे, तो फिर बेसब्री नहीं है यार 6 घंटा कैसे गुजारेंगे, 6 घंटा नहीं जा रहा है, टाइम नहीं जा रहा है, बार बार घड़ी देख रहा है, टाइम नहीं जा रहा है, वो बेसब्री जो है ना वो नहीं आएगा, क्योंकि हाथ में काम है, एक काम लेकर मैंने बैठा है ना, तो ये 6 घंटा जो ना काम करते 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 गुजार जाएगा, दूसरा विमान आ जाएगा। तो ये बेसब्री के हवाले से एक मजेदार था अब्दुल हबीब,
ये बड़ी अच्छी बात बताई मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, जिसके पास काम होता है तो उसका टाइम यूं गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता, वो टाइम को पकड़ रहा होता है, जो फारिग आदमी होता है वो घड़ियां देख रहा होता है, ओ यार टाइम ही नहीं गुजर रहा। तो अपने आप को मसरूफ रखिए, अपने आप को अच्छी सोहबत में रखिए, अच्छे माहौल में रखिए, दावत इस्लामी आपके सामने है, दावत इस्लामी के मदनी काफिलों में सफ़र कीजिए, दावत इस्लामी का हफ्तावार इज्तिमा होता है, आप उसमें पाबंदी से आएँ, इस्लामी बहनों के इज्तिमात होते हैं, अपने घर की इस्लामी बहनों को वहाँ शिरकत करवाइए, दावत इस्लामी के 12 दीनी काम है वो कीजिए, मदनी चैनल देखिए, इतने काम है तो इंशाल्लाह पता ही नहीं चलेगा। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, और हमारे मुबल्लिगीन का, मेहमानान गिरामी का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने भी मकसद वक्त अता फरमाया, तशरीफ लाए, और मदनी चैनल के नाज़रीन से भी अर्ज़ करूँगा कि मदनी चैनल ज़रूर देखा करें, मदनी चैनल देखते रहेंगे इंशाअल्लाह इसकी खूब बरकतें नसीब होंगी, अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।